इसमें मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम कलीसिया में प्रभु यीशु क्राइस्ट का रूपांतरण का त्यौहार मनाते हैं। प्रभु यीशु क्राइस्ट के रूपांतरण का त्यौहार। फिलिपियों के नाम पत्र में अध्याय 2 वाक्य 6-8 में संत पौलुस हमें ये बताते हैं कि यीशु विनम्र बनकर हमारे बीच में आते हैं और हमें उनकी विनम्रता का अनुकरण करना चाहिए। हमें प्रभु यीशु क्राइस्ट की विनम्रता को एक नमूना बनाना चाहिए। संत पौलुस कहते हैं, आप लोग अपने मनोभावों को ईसा मसीह के मनोभाव के अनुसार बना लें। किस प्रकार का मनोभाव? आगे संत पौलुस इसी बात को समझाते हैं। वह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बनाया और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को भी और भी दीनहीन बना लिया। यानी प्रभु यीशु मसीह ईश्वर है, वास्तविकता यही है, लेकिन लोगों को कैसे दिख रहे हैं? ईश्वर की महिमा के साथ नहीं, लेकिन उस महिमा से वंचित एक व्यक्ति के रूप में, एक दीनहीन व्यक्ति के रूप में दिखाई देते हैं, एक लाचार व्यक्ति के रूप में दिखाई देते हैं। महिमा सबके सामने प्रकट नहीं करते हैं। महिमा वास्तविकता है, ईश्वरीयता वास्तविकता है, लेकिन मनुष्य के रूप में, एक सीधे साधे मनुष्य के रूप में, न केवल एक साधारण मनुष्य लेकिन दीनहीन मनुष्य के रूप में दीनहीन बनते हैं, आज्ञाकारी बनते हैं। आज्ञा देने वाले ईश्वर आज्ञाकारी बन के आते हैं और इसी को संत पौलुस बहुत बारीकी से हमें समझाते हैं। कलौसियों के पत्र में संत पौलुस अध्याय 1 वाक्य 15-16 में प्रभु यीशु मसीह के महिमा के बारे में भी कुछ कहते हैं। संत पौलुस कहते हैं, ईसा मसीह आदर्श ईश्वर के पितृ प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पौलोठे। आदर्श ईश्वर के प्रतिरूप और समस्त सृष्टि के पौलोठे हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो आदर्श और स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्ट किया गया है। इसी महिमा को यीशु छिपा के रखते हैं, इस महिमा को, यानी वह सर्वशक्तिमान ईश्वर है। सब कुछ की सृष्टि उन्हीं के द्वारा हुई है। यहां तक संत पौलुस कहते हैं कि दृश्य और अदृश्य सब वस्तुओं की सृष्टि करता है, और यह भी जोड़ देते हैं स्वर्गदूतों की श्रेणियों को भी इसी प्रभु ने सृष्टि किया है, यही बात हमें संत यूहन्न भी अपने सुसमाचार में समझाते हैं। संत यूहन्न के सुसमाचार के अध्याय 1 वाक्य 1 में संत यूहन्न भी इसी बात को समझाते हैं। संत यूहन्न कहते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वह आदि में ईश्वर के साथ था, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। ईश्वर की महिमा। लेकिन इस वास्तविकता को प्रभु यीशु छिपा कर रखते हैं। कितनी सादगी के साथ वे जीवन बिताते हैं। सादगी ईश्वर को बहुत प्रिय है, सादगी और गरीबी, इन दोनों चीज़ों से ईश्वर बहुत प्यार करते हैं। सादगी और गरीबी से ईश्वर को प्रेम है। हम जानते हैं राजा और सम्राटों में नहीं बल्कि निरे मनुष्यों में ईश्वर अपने आप को प्रकट करते हैं। दुनिया के इतिहास को बारीकी से अध्ययन करने पर हमें यह पता चलता है कि ईश्वर राजा और सम्राटों में नहीं बल्कि निरे मनुष्यों में अपने आप को प्रकट करते हैं। मदर तेरेसा को याद कीजिए, एक ऐसी महिला देखने में भी ऊंची नहीं है, उसमें कुछ ताकत नहीं है, झुकी हुई महिला, और बोलने में भी उनके बोलने में भी इतना असर नहीं है लोगों के सामने, अगर दुनिया की दृष्टि से देखे जाए तो, क्योंकि वो धीमी आवाज में बोलती है, बहुत कम बोलती है, लेकिन ऐसी एक झुकी हुई छोटी सी महिला जो लोगों के सामने बलहीन दिखाई देती है, उसी में ईश्वर अपनी महिमा को प्रकट करते हैं। तो इसी प्रकार हम जानते हैं कि राजा और सम्राटों में नहीं लेकिन निरे मनुष्यों में ईश्वर अपने आप को प्रकट करते हैं। ईश्वर को सादगी और गरीबी से प्रेम है। गौशाले में जन्म लेता हुआ एक बालक, बड़ाई के पुत्र कहने वाला, कहलाने वाला एक बालक, और वह बड़ा होता है और बड़े होने के बाद भी उसका घर कहलाने योग्य कुछ जगह नहीं है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 वाक्य 58 में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, लोमड़ियों की अपनी मांदे हैं और आकाश के पक्षियों को अपने घोंसले, परंतु मानव पुत्र के लिए सिर रखने के लिए भी जगह नहीं है। भूखा, कभी कभी भूखा है प्रभु, इसलिए अंजीर के पेड़ के पास जाकर फल ढूंढते हैं। कभी कभी प्यासा है, प्यासा प्रभु समारी प्रदेश में उस कुएं के पास पानी पीने के लिए आ जाते हैं। कभी कभी थक जाते हैं, नाव में सो जाते हैं, थके हुए बहुत बड़ी थकान महसूस करके नाव में सो जाते हैं, और एक दिन जब सभी अपने शिष्य आते हैं एक साथ भोजन करने, तो वो नौकर बनकर बैठ जाते हैं उनके पैरों के सामने, उनके पैरों को धोने के लिए। क्या संदेश प्रभु दे रहे हैं? प्रभु महिमामय है, सर्वशक्तिमान है, लेकिन दिखावा प्रभु को पसंद नहीं है। वास्तविकता से प्रभु प्यार करते हैं, वास्तविकता प्रभु चाहते हैं, दिखावा नहीं, असलियत और वास्तविकता प्रभु चाहते हैं। ईश्वर को आज भी सादगी और वास्तविकता पसंद है। वे हमारे पास आज भी भूखे, प्यासे, बीमार और कैदी बनकर आते हैं, और इसलिए अंतिम न्याय के समय भी प्रभु हमसे पूछेंगे, मैं भूखा था, क्या तुमने मुझे खिलाया? मैं प्यासा था, क्या तुमने मुझे पिलाया? क्योंकि आज भी प्रभु भूखा, प्यासा, नंगा और बीमार है। पूरे 33 साल के जीवन में सिर्फ कुछ क्षणों के लिए अपनी महिमा को ताबोर पर्वत पर प्रकट किया, वो भी भीड़ के सामने नहीं, और ना ही 12 प्रेरितों के सामने, सिर्फ 3 लोगों के सामने अपनी महिमा को प्रकट किया। 33 साल के जीवन काल में कुछ पलों के लिए, कुछ क्षण के लिए अपनी महिमा को प्रकट किया, वो भी पूरी दुनिया के सामने नहीं, सिर्फ 3 लोगों के सामने, और उनसे भी कहते हैं इसके बारे में किसी से चर्चा नहीं करना। प्रभु वास्तविकता चाहते हैं, दिखावा नहीं। हम बाहरी चीजों पर बहुत ध्यान देते हैं और इसलिए हम धोखा भी खाते हैं। बाहरी सुंदरता को देखकर हम पीछे जाते हैं, किसी के नाम पैसे ऐशाराम को देखकर हम धोखा खाते हैं। हम बाहरी चीजों पर ध्यान देते हुए धोखा खाते हैं। संत मार्कुस के सुसमाचार में अध्याय 8 वाक्य 36 में प्रभु हमें चेतावनी देते हैं और कहते हैं, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार तो प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे। पूरा संसार अपने पास रख लेता है लेकिन जीवन गंवा देता है। इस प्रकार के प्रलोभन प्रभु यीशु के जीवन में भी हुआ था। शैतान ने प्रभु से कहा, यह सब तुम्हें दे दूंगा, सिर्फ तुम्हें दंडवत करना है मेरे सामने, बस सब कुछ दे दूंगा। लेकिन प्रभु स्वयं कहते हैं और सिखाते हैं, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे, अपनी आत्मा ही गंवा दे, इससे क्या फायदा फिर। तो प्रभु हमसे चाहते हैं कि हम वास्तविकता पर ध्यान दें। संत फ्रांसिस को देखिए, असीसी के संत फ्रांसिस के जीवन में हम ये इस प्रकार की सादगी देखते हैं। एक धनी परिवार का लड़का था, धनी परिवार में उसका पालन पोषण हुआ था, लेकिन उसको मालूम हो गया कि इस धन से, इस दिखावे से कोई फायदा नहीं है। वास्तविकता चाहिए, आत्मा की वास्तविकता, आत्मा की वास्तविकता। हमें यीशु येसु से सीखना चाहिए। संत पौलुस कहते हैं, हमारी मनोभावनाओं को, हमारे मनोभावों को प्रभु येसु मसीह के मनोभाव के अनुसार बनाना चाहिए। प्रभु येसु दैनिक जीवन के लिए भी हमें चेतावनी देते हैं। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6, संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 1 में प्रभु कहते हैं, सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धार्मिक कार्यों का प्रदर्शन न करो। लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धार्मिक कार्यों का प्रदर्शन मत करो। बाहरी दिखावे के लिए कुछ नहीं करना। आगे उसी अध्याय में वाक्य 5 में फिर से प्रभु कहते हैं, ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करना। वे सभागृहों और चौकों पर खड़े होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं। और आगे वाक्य 16 में प्रभु फिर से कहते हैं, ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करना। प्रभु यीशु वास्तविकता चाहते हैं, असलियत चाहते हैं। मैं समझता हूँ आज के त्यौहार का यही मतलब है। आज का त्यौहार प्रभु के रूपांतरण का त्यौहार, यानी अपनी महिमा को हमेशा हमेशा के लिए न प्रकट करते हुए वास्तविकता को छुपाकर सादगी के साथ जीवन बिताते हैं। हमसे भी प्रभु यही चाहते हैं, टिंडोरा पिटवाने के लिए नहीं, ढोंगियों की तरह बाजारों में खड़े होकर प्रार्थना करने के लिए नहीं, ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास करने के लिए नहीं, लेकिन हृदय की गहराई में यीशु को पहचानने और यीशु की आराधना करने के लिए हम बुलाए गए हैं। हमारे धार्मिक कार्यों का हमें लोगों के सामने प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। तो आइए हम परमपिता ईश्वर से निवेदन करें कि ईश्वर हमें ये कृपा दें कि हम यीशु के समान सादगी का जीवन बिता सकें।